अब इसके बाद मौजू पलटता है किस तरफ, किताल की तरफ, क्योंकि हज का जिक्र आगे आना है। तो फरमाए व कातिलु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में किताल करो, लड़ाई करो, टू फाइट के मानों में, किन लोगों से, राजातों से, नहीं, अल्लज़ीना युकातिलूनकुम, उनसे लड़ो जो तुमसे किताल करते हैं। यहाँ पे वही बात जो शुरू से आपको चार लड़कियों वाली बता रही हूँ ना, कि सूरत बकरा में जो चार टॉपिक हैं, इबादात, मामलात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और किताल, यहाँ पर किताल का जिक्र है कि तुम्हें खाना काबा का हज करना है, वहां पे तो दुश्मन आए हुए हैं, तो जैसे उन्होंने तुमसे लड़ाई करके तुमको निकाल दिया, अब तुम भी वही काम करो। यहाँ समझ लीजिए कि ये आयत और इससे अगली चंद आयतें ये सन 6 हिजरी में नाजिल हुई। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह बात आसान हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करने पे मजबूर कर दिए गए, ये तो हम सब के लिए बात आम है। 6 साल हो गए थे आपको मक्का में आए हुए, जहर है कि मदरलैंड बंदे को याद आता है, अपना घर बार भी याद आता है, लेकिन वहाँ कब्जा था दुश्मनों का, जा नहीं सकते थे, इजाज़त नहीं थी। ख्वाब के जरिए अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि आप खाना काबा में गए हैं और आप उम्रा कर रहे हैं, उस दौर का जैसे था रिवाज। नबी का ख्वाब वही होता है, अल्लाह के नबी ने लोगों को सुबह उठ के हुक्म दिया, तैयारी करो, हम उम्रा करेंगे। अब साहबा के लिए ऐसे जैसे अब आप में से कोई 4-6 साल से पाकिस्तान नहीं गया या इंडिया नहीं गए, जहां भी आप रहते हैं तो खुशी होगी ना सुन के। बड़े जोश के साथ पुरअमन तरीके से एहराम बांधे हुए, जो इस बात की निशानी है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा इरादा उम्रे का है, कोई हथियार पास नहीं, हदी के जानवर साथ हैं, बिल्कुल कोई हालात ऐसे नहीं थे कि जिसको देखकर ये लगे कि आप शायद लड़ाई के मूड में गए हैं। आप लोग गए लेकिन मक्का से बिल्कुल करीब के मुकाम पर हुदैबिया की जगह पे आपको रुकने पे मजबूर किया गया, और मक्का वालों ने अना का और ईगो का ये इशू बना लिया कि हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। 10 बड़ी सख्त शराइत पे सुलह हुदैबिया हुई, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के नाम पे आप पढ़ के देखें दिमाग खुल जाता है। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान में, आपके पास पूरी सूरत अल फतह में उसका तस्करा आएगा। किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया गया। अगर उस वक्त मुसलमान तशद्दुद वाले होते, तशद्दुद परस्त होते, टेररिस्ट होते, जंगजू होते, खून के प्यासे होते, जो आज लोगों ने मुसलमानों को नाम दिए हुए हैं, और दुख की बात है कि कुछ मुसलमानों ने अपने जज्बातीपन से ये करके भी फिर दिखा दिया, तो नतीजा क्या निकलता कि उस वक्त वहाँ बहुत बड़ी जंग होती। लेकिन किसको पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, क्या उनका ईमान था, कितने पीस मेकर थे, कितना सुकून चाहते थे, बिल्कुल मंजिल पे पहुंचे पर हमारी तरह तेज रफ्तार जहाजों पे नहीं गए थे, 500 मील का फासला ऊंटों और घोड़ों पे मदीना से तय करके आए थे, लेकिन सिर्फ इस डर से कि यहाँ लड़ाई ना हो, इनकी बात माने, आप हुदैबिया के मुकाम से वापस आ रहे हैं। अब आप इस सिनेरियो को जहन में रखें और आयत पढ़ के देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं वकातिलु फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, और किताल करो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे किताल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं तुमसे। हाँ देखो, वला तातदू, ज्यादती ना करना, हद से ना गुजरना, क्योंकि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। इजाजत मिल रही है लड़ाई के जवाब में, लड़ाई सिर्फ उनसे जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं, और इसके पीछे 13 और 6 लगा लीजिए कितने साल का सब्र है। मक्का में लोग प्रोसिक्यूट किए जाते थे, उनको आजमाइश का शिकार किया जाता था, लेकिन यही कहा गया को फोई दिया को, हाथ रोके रहो, अभी नहीं, अभी तुम थोड़े हो, अभी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, अभी तुम्हारे अंदर वो पुख्तगी नहीं, ताकि ऐसा ना हो कि तुम लड़ाई छेड़ लो और बाद में मार खाते रहो। लिहाजा नतीजा क्या निकलता कि वो ज्यादती करते। इसलिए अगली आयत को पढ़ेंगे ना, फिर ये पूरे पे आपके साथ इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि अल्लाह ताला दुश्मन से लड़ाई के मौके पे बात करते हुए कह रहे हैं वला तातदू, देखो ज्यादती ना करना। अब आप बताइए कि यहाँ दुश्मन से लड़ाई के जवाब में लड़ाई करते हुए ज्यादती ना करना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर इंस्ट्रक्शंस किताबों में मौजूद हैं। आप क्या कहा करते थे, किसी बूढ़े पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना, जो अपने इबादत खानों में, गिरजों में, मंदिरों में, जहां बैठे अपनी इबादत करें उनको नहीं छेड़ना, नहत्ते बेगुना शहरी जो अपने घरों में कामकाज करें उन पे हाथ नहीं उठाना, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हें मारने आ गए। देखिए ये तो फितरत का असूल है, आप बच्चे को भी मारेंगे तो बच्चा भी दिफा करेगा ना, क्या ये फेयर है कि एक मुसलमान है उसको कोई मार दे तो वो कहती तुम मुझे मार ही लो क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये अकल का तकाज है? क्या अपनी जान को बचाना लाजिम नहीं है? अपनी इज्जत को बचाना लाजिम नहीं? अपने माल को बचाना लाजिम नहीं है? बल्कि हदीस में आता है कि जो अपना माल बचाते हुए, जान बचाते हुए या इज्जत बचाते हुए मारा गया वो शहीद है। तो जब कोई ज्यादती करे तो फिर उसके सामने स्टैंड लो, इतनी बात वाजे हो गई। अब इसके बाद होगा क्या कि जब कोई किसी से ज्यादती करे, हाँ ज्यादती ये नहीं करनी कि अगर उसने तुम्हें एक हाथ से मारा है तो तुम दो हाथों से मार लो। मिसाल है कोई एक शख्स है ए, वो आके मार रहा है, तो हम उसके गुस्से में जाके तो पीछे उसके घर में बैठे सारे लोगों को मार दो। जब हम मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स के बीच की झड़पें और फसादात और फलां फलां दो गिरोहों को मामले देखते हैं तो हम यही बातें सुनते हैं ना, उनके घरों का आग लगा दी, उनके कमरे में गए, ये कर दिया वो कर दिया। इस्लाम कहते हैं इसकी इजाजत नहीं है। करो क्या? अब अगली आयत को बड़े गौर से सुनिएगा, इसमें वही ट्रिकी तर्जमा है, वक्त लू हूँ और मारो उनको, कत्ल करो। टू किल का लफ्ज लिखिए इसके ऊपर, क्योंकि आप देखिए काफ के ऊपर जज़्म आ रही है, लफ्जी वजाहत में बात हुई थी। हैसु सकिफ तुम हो, इनको जहां कहीं पाओ। अब आप देखिए ये किन की बात हो रही है, हैसु सकिफ तुम से क्या मुराद है? काफरों को जहां देखो मारना शुरू कर दो, एयरपोर्टों पे देखो, मॉल्स में देखो, नहीं लिखिए इसके बाद के मैदाने जंग में पाओ। हम जब कुरान का टेक्स्ट सही नहीं समझते तो हम अपने ही कलाम को ठीक नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम्हें मारने की नीयत से, तुम्हारे साथ गलत मामला करने की नीयत से निकल आए हैं, फिर अब तुम भी इनको मारो, जाहरी बात है। ये कौन सा मामला होता है? जब दुश्मन आ गया। समझ लीजिए जंग दो किस्म की होती है, एक होती है डिफेंसिव वॉर, दिफाई जंग उर्दू में इसको हम बोलेंगे, अपना दिफा करना बचाना, और एक जंग होती है ओफेंसिव वॉर, इकदामी जंग, खुद पहल करना। दो बातें समझ लें, डिफेंसिव एंड ओफेंसिव। डिफेंसिव वॉर क्या होती है कि दुश्मन खुद आया आपको मारने, तो आप क्या करो? मुकाबला करो। यहां इसकी बात है, बात इतनी वाज़ेह। भाई दुश्मन आपको मारने आ गया तो आप मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, स्माइल देंगे? नहीं 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 तुम हमें मार दो, हम कुछ नहीं आगे से कहेंगे। मच्छर को आप मारते हैं मच्छर उड़ जाता है, कॉकरोच को आप मारेंगे वो भाग जाता है, तो तुम खड़े रहो क्योंकि तुम मुसलमान हो। डज इट मेक एनी सेंस? ये तो टिट फॉर टैट है। हाँ इसमें भी ज्यादती नहीं करनी, ठीक है? तो कहा जब वो तुम्हें मारने की नीयत से निकले हैं ना, मैदान जंग में मिले तो तुम मारो। क्या कभी कोई फौजी या कोई कमांडर ऐसा होगा जो अपने फौजियों से कहे कि जहां तुमने दुश्मन देखा खबरदार उनको मारा दो, उनको देख के दुश्मन को सलाम करते रहो, इतनी देर में दुश्मन तुम्हें मार जाएगा। समझ आने वाली बात है ना? अकलमंद कौन सा होगा वो कहेगा कि दुश्मन तुम्हें मारे इससे पहले तुम उसको मार दो। तो यही बात इधर है, पहली बात। फिर दूसरी देखिए, वखरिजूहुम, और निकालो इनको, मिन हैसु अखरजूकुम, जहां से इन्होंने तुमको निकाला। किधर से निकालने की बात है? मक्का से, कि इन्होंने इतना जुल्म कर दिया कि मुसलमानों का वहां रहना मुश्किल हो गया, तो अब तुम इनको वहां से निकालो। और ये कब कहा जा रहा है? जब उन्होंने हुदैबिया के मौके पे आपका रास्ता रोका। बात वाज़ है, पहले 13 साल तो ये बात नहीं हुई, तो यही कह दिया कि अब तुम इनके साथ मामला करो, अगर ये तुम्हारे रास्ते में आते हैं तो फिर तुम इनको पकड़ो। और साथ ही कह दिया, वल फितना तो शद्दु मिनल कत्ली, और फितना तो कत्ल से भी बढ़कर है। क्या मतलब? होता क्या है, देखिए ये हिस्ट्री में भी था और आज भी यही है। हमें सबको मानना पड़ेगा कि जब भी कहीं कोई दूसरा मजहब वाला, कोई दूसरी जात वाला शख्स बड़े से बड़े जुर्म भी करते ना, ना मीडिया को हरकत होती है, ना लीडर्स को, और ना पब्लिसाइज वो बात होती है। जो ही मुसलमान के लफ्ज के साथ कोई बात आती है ना, सब उछालते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? अच्छा ये ट्रू तो है, लेकिन इसकी वजह आगे हम पढ़ेंगे। आज हमारे अपने करतूत ही इतने बुरे हैं कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करता। बच्चा बच्चा हमें टेररिस्ट कहता है, मीडिया पे हमें बदनाम किया जाता है, जहां कोई गोली चलती है मुसलमान का नाम क्यों आता है? क्योंकि मुसलमान अपनी किताब को छोड़े हुए। अल्लाह की मदद मुसलमान के साथ आती है, इस्लाम के साथ, और इस्लाम होता है अमल के साथ। जब हम मुसलमान अपने दीन पे अमल नहीं करते तो अल्लाह की मदद क्यों आए? नतीजा क्या होता है कि फिर मुसलमानों को जब दुश्मन मारते हैं, अल्लाह कहते हैं और मारो। याद रखिए अल्लाह की एक सुन्नत है, जब तक अल्लाह की प्यारी कौम, जब भी किसी नबी की, जिस तरह आज हम मान करते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी की उम्मती हैं, जब तक वो कौम अपनी किताब से जुड़ी रहती है, अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मुसलमानों का रोब डालता है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप खुद हैरान होंगे। सीरत ही पढ़ ले, मैं तो कहती हूँ इसका बेहतरीन तरीका यही है। जब मुसलमान अपनी किताब से कटते हैं, किताब को टुकड़ों में बांट देते हैं, ये हिस्सा ऐसे पढ़ लो, ये दुख पे पढ़ लो, ये बीमारी पे पढ़ लो, इसका वजीफा कर लो, जब मुसलमान किताब से कटते हैं तो अल्लाह दुश्मनों के दिल में डालता है कि इनको मारो। सही रिवायत में आता है कि हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा था कि अल्लाह मैं जमीन पे हूँ, तू आसमान पे, मुझे कैसे पता चले कि तुमसे खुश है या नाराज है। किसी से भी मोहब्बत हो तो बंदा सोचता है ना कि पता नहीं वो मुझसे खुश है कि नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को चूंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत थी तो उन्होंने पूछा, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, कह मूसा अगर तुम देखो कि तुम्हारे ऊपर अच्छे लोग हुक्मरान हैं तो ये मेरी उस कौम के ऊपर रजामंदी की अलामत है। यानी जब अल्लाह किसी कौम से खुश होता है ना तो उनको गुड लीडर्स दे देता है, अच्छे लीडर्स, जान निसार, कुर्बानियां देने वाले, अपने आप को नहीं बल्कि मुल्क व मिल्लत को बनाने वाले। और कहा जब तुम पर बुरे लोग मुसल्लत कर दिए जाएं तो समझ लो कि मैं उनसे नाराज हूं। आज आपको लगता है अल्लाह हमसे खुश है कि नाराज है? और अल्लाह नाराज ऐसे नहीं होता, उसकी वजह होती है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि आज तुम मुसलमान अगर इनके मारने के जवाब में आके इनके सामने खड़े होते हो तो ये इतना शोर मचाते हैं, हालांकि वल फितना तो अशद्द मिनल कत्ल। यहाँ अल्लाह उस फितने को समझ जाए तो इंशाल्लाह बात बहुत आसान हो जाएगी। फितना कहते हैं परसिक्वेशन को, किसी को उसके दीन पर अमल करने से रोकना। हालात के तहत अगर हम आयतों को देखें तो मक्का के 13 साल परसिक्वेशन के थे, मजहबी इस्तेहसाल के थे, रिलीजियसली इस तरह से उन्होंने मुसलमानों को पीछे किया हुआ था कि लट डाउन करने ली बात ही, नमाज नहीं पढ़ सकते थे मुसलमान जाके बैतुल्ला में। सब्र किया ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि आज इनके मारने के जवाब में अगर तुम मारने निकलते हो तो ये इतना शोर कर रहे हैं। तो ये जो पिछले 13 साल से मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, बीबी सुमैया की कहानी आप सुन चुके, जब मुसलमान हुई तो लोगों ने ऐसे तो नहीं छोड़ दिया, लौंडी थी अबू जहल के खानदान की, अल्लाह इस्लाम देता है बंदा डरता थोड़ी है किसी से, ना फिर बाप से डरता है, ना शोहर से, ना आका से, जम गई। अबू जहल ने इनको दो ऊंटों से बांधा, एक पाँव एक ऊंट से, दूसरा दूसरे से, और दोनों ऊंटों को मुख्तलिफ सूरत में चलाया और जिस्म पर तीर मारा, शर्मगाह पे इनका जिस्म चिर गया था। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون। बीबी सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि तुमने जान तो ले ली लेकिन ईमान तो नहीं लिया ना। बिलाल को रेत पे लिटाया जाता, तपती रेत पे उनके ऊपर पत्थर रख दिया जाता, अंगारे उनके जिस्म के ऊपर से खाल जो चर्बी पिघलती उससे बुझते थे, इंसान तो नहीं होता। ये क्या था, ये फितना था? तो अल्लाह कहते हैं बताओ जो तुमने फितने फैलाए हुए थे क्या ये बुरे? तुम मुसलमानों को उनके दीन पे अमल ही नहीं करना दे रहे। आज के दौर में देख ले, एक औरत का सिर्फ एक 10 इंच का टुकड़ा निकाब कितना चुभता है लोगों को, भी तुम्हारी बला से। तुम नंगे फिरो, तुम्हारा जिस्म दिखे छुपे कोई हर्ज नहीं, कोई नहीं बोलता, कोई एक गज का टुकड़ा लगा ले मुंह पे तो बड़ी दुख की बात है। बल फितना तो शद्द मिनल कत्ल, तुम छोटी छोटी बातों को फितना बना के मुसलमानों को क्या समझते हो, बेवकूफ है? बेवकूफ तो नहीं होते वो, लेकिन सब्र करते हैं। अल्लाह के नबी ने जिस चीज से लोगों को रोका था ना, वो एक्सप्लॉयटेशन थी, एक्सप्लॉयट नहीं करना। जब हम दुश्मन को कहते हैं ना कि गुस्सा दिला देते हैं तो गुनाहगार भी पिसते हैं और ईमानदार भी पिसते हैं। असल जो इस्लाम का मिजाज है ना, वो टकराव का नहीं है, ये समझ लें। टकराव क्या होता है? ऐसे कट 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 तुम्हारे सामने। इस्लाम का मिजाज एवॉइड करने का है, तुम अपना रास्ता बदल लो। आप इमेजिन करें, आप कहीं जा रहे हैं, आपके रास्ते में एक पत्थर आ गया, क्या करेंगे? इधर से ही गुजरना है, गुजरे, आपका अपना नाखून टूटेगा, राइट? आपकी गाड़ी को ठुकेगी, करो क्या? राइट और लेफ्ट देखो किधर रास्ता अच्छा है, मुड़ जाओ। 13 साल तक टू इवॉइड की पॉलिसी रखी। ये जो हिजरत की है ये क्या थी? चलो छोड़ो, तुम रहो इधर, हम जाते हैं, तुम संभालो अपना मक्का, यही रास्ता ना। कितनी मुश्किलें सह कर नबी सल्लम मक्का को छोड़कर मदीना में आए, क्योंकि तुम्हें हम कुछ नहीं कहते, तुम कर लो, लेकिन उनको वो भी चैन नहीं आया, मदीना में पहुंच गए आपको मारने, तो आखिर एक बर्दाश्त की हद थी ना। तो लिहाजा कह दिया वला तुकातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हराम। देखो तुम पहल नहीं कर सकते मस्जिद हराम में लड़ाई की, मत तुम लड़ो उनसे मस्जिद हराम में। आप सब जानते हैं कि मस्जिद हराम का एरिया जो है इधर जंग खून रेजी सब हराम है, धागा नहीं तोड़ सकते, तिनका नहीं तोड़ सकते। बाप का कातिल आपके सामने आ जाइए। और ये मक्का वाले भी इसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि बिगड़े हुए थे, लेकिन था तो उनके दिल में एहसास, तो खाना कबा की हदूद में वो लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन इन्होंने हुदैबिया के मुकाम पे मुसलमानों को रोककर खुद शह दी। क्या करे, ये तो अल्लाह के नबी थे ना, मुड़ के आगे कोई और जोशीला और गुस्से वाला होता तो कहता आज इनको करके दिखाते हैं। क्या समझा इन्होंने, ऐसी बात होती। पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब आप ये पूरा वाकया, तो आप खुद देखेंगे कि अल्लाह के नबी में कितनी हिकमत थी। और उस वक्त का आपका सब्र पता है मक्का की सूरत में तोहफे में मिल गया, मक्का 2 साल के अंदर फतह भी हो गया, खुद अपनी शरायत की जद में आ गए। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं तुम खुद पहल ना करो मस्जिद हराम में लड़ाई की, हाँ हत्ता युकातिलुकुम फी, यहाँ तक कि वो पहल ना कर दे तुमसे लड़ने की। बात वाज़े, पता क्या चला कि तुमने पहल नहीं करनी। यहाँ आप देखिए कि डिफेंसिव वॉर कर सकते हो, ऑफेंसिव नहीं करनी, ये मतलब है कि पहल ना करो। हाँ फाइन कातलुकुम, अगर वो छेड़खानी करते हैं, वो तुमसे लड़ते हैं इसमें किसमें हरम की हद में, तो फिर फक्तलुहुम, फिर मारो। यानी हरम की हद में लड़ाई झगड़ा करने वाले की सजा मौत है, ये मतलब है इधर। वो पहल करेंगे तो फिर मारो, क्योंकि कजालिक जजाउल काफरीन, यही बदला है काफिरों का। जिसको अल्लाह के घर की हुरमत की कोई कदर ना हो, जो अल्लाह के जगहों को अपने लिए अब हलाल कर ले, तो क्या फिर उनको ऐसे छोड़ दो, नहीं। हाँ लेकिन फिर देखिए रास्ता खुला हुआ है, फइनिन्तहौ, फिर भी अगर वो बाज आ जाए, किस चीज से, लिखिए परसिक्वेशन से, फितने से, मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती से बाज आ जाए, फइन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी फिर तुम उनको ना छेड़ो, वो माफी मांगते तो माफ कर दो। हाँ वकातिलूहुम, लड़ाई करो उनसे, हत्तला तकून फितनतुन, यहाँ तक के फितना न रहे। इस आयत 193 के आगे लिख लीजिए, ये है ऑफेंसिव वॉर की दलील। ऊपर की आयत 191 डिफेंसिव, दुश्मन आ गया मुकाबला करो। यहाँ क्या कह रहा है कि दुश्मन आने वाला है, अब तुम पहले चले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की जंगें गज़वे खंदक तक जितनी थी, अब मैं आपको उलझाना नहीं चाहती नामों में और सालों में, ये सब डिफेंसिव वॉर थी। अल्लाह के नबी ने पहल कभी नहीं की, बैठे हुए अपने घर में सुकून से, लेकिन वो वहां से छोड़ के यहाँ आके आपसे लड़ाई करना चाह रहे हैं। चलो मक्का में तो उनका ही समझिए कि मदर लैंड थी, भी उनका मुल्क था, तो मदीना तो मुसलमानों का था। अल्लाह के नबी खामोशी से बैठे हैं, बदर से लेके खंदक तक की सब वॉर जो थी ये डिफेंसिव थी। मतलब ये है दूसरे लफ्जों में कि दुश्मन ने पहल की फिर मुसलमान निकले, ऑफ कोर्स निकलना था, क्यों ना निकलते। लेकिन उसके बाद से लेके तबूक तक की सब जंगें ऑफेंसिव थी, क्योंकि ला तकून फितना। खुलासा कर देती हूँ, इस्लाम को जंग पसंद नहीं है, इस्लाम पुरअमन मजहब है। इससे आपका इस्लाम का मिजाज खुद देख सकते हैं। अहदीस बेशुमार है कि मोमिन तो अपने हाथ और जुबान से किसी को तकलीफ नहीं देता, नेवर्स के साथ कितना अच्छा होता है, कहाँ वो जाके जंग करेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमानों को सताए मारने आ जाए, तो फिर बेजिगरी से मुकाबला करो। बुजदिल नहीं होता मुसलमान, मौत से नहीं डरता, प्यार करता है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मरता है वो तो मरता ही नहीं, वो तो शहीद है। ठीक है, पहली सूरत। दूसरी सूरत क्या है कि कोई जंग में पहल तो नहीं कर रहा, लेकिन मुसलमानों से छेड़खानी कर रहा है। आप पढ़ेंगे गज़वे बनू नज़ीर में इन्होंने मुसलमान औरत को बरहना कर दिया था, और एक मुसलमान औरत की इज्जत खराब की, उसका कपड़ा ऐसे धागे से बांध दिया, जब उठी तो उसका तहबंद खुल गया और इस पे वो हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी को खबर मिली कि एक मुसलमान औरत की इज्जत पे हाथ पड़ा, आपने दुश्मन को चैलेंज कर दिया। तो लिहाजा दुश्मन जंग करे या मुसलमानों को रोके, देखिए आप किसी को रोक नहीं सकते, आज पूरी दुनिया में रिलीजियस आजादी है कि नहीं, तो मुसलमान पे क्यों नहीं? आप क्यों इन छोटी छोटी बातों पे मुसलमानों को चिड़चिड़ाते हैं? ये तो शुक्र करें कि आज के मुसलमान खुद ही नहीं अमल करते, सच्ची जो बात है, खुद ही अमल नहीं करते, वरना आपकी ये छोटी छोटी बातें बेस बना के आज कितनी पाबंदियां लगवाई जाती हैं कि ये ना करें वो ये ना करें। परसों को एक क्लिप सुन सुन रहे थे तो मेरे भी कान में आवाज पड़ी, तो हम ये हंस रहे थे कि तकलीफ किसको है, आपको क्या लगे कौन क्या कर रहा है। एयरपोर्ट्स पे लोग गंदी हरकतें करें, इंसानियत सोज हरकतें करें, जानवरों वाले काम सड़कों पे चलते लोग करें, नो प्रॉब्लम। ऐसी औरतें जो मासूम बच्चों की आंखों से मासूमियत खत्म कर दे रोज उनकी गंदी तस्वीरें देख देख के, कोई परवाह ही नहीं है किसी को, है किसी को परवाह? कोई कपड़े पहने कोई ना पहने, हु केयर्स। कोई चर्च में जाए मस्जिद में जाए, कोई मसला नहीं किसी को। जब मुसलमान अपने दीन की को बात करने लगे तो परेशान। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम क्या करो, फितने को खत्म करो। दुनिया में आजादी चाहिए ना, कुफर को भी आजादी है, अल्लाह नहीं रोकता जो मर्जी करे कोई, लेकिन मुसलमान को भी आजादी होनी चाहिए। इसलिए कव यकून दीन, इसको समझेंगे तो बस सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे के समझाऊंगी कि यकून दीन लिल्लाही कैसे है। किसी भी मुल्क का जहन में लाइए तसव्वुर, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्वे, लंदन, अमेरिका, कनाडा, छोटा या बड़ा, वेस्टर्न ईस्टर्न, कोई फर्क नहीं। हर मुल्क का एक कानून होता है, उसका एक झंडा होता है, उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं। हर मुल्क में किसका कानून चलता है? उस मुल्क का ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉ होगा, इंडिया में इंडियन लॉ होगा, अमेरिका में अमेरिकन लॉ होगा, ठीक है ना, एक जनरल बात है। अब जिस मुल्क में जिसका लॉ है वही चलेगा ना। अब आप इससे समझे, कोई दूसरा मुल्क आके उसको फोर्स करे कि तुम अपना कानून छोड़ दो और हमारा मानो, तो हम कहेंगे इसने कब्जा कर लिया। बाज दफा मुल्क दूसरे मुल्कों पे जो हमले करते हैं वो यही होते हैं ना। अब आप सोचिए कि जिस तरह ये छोटे छोटे मुल्क है ना दुनिया में, 100 200 मुल्क, ये पूरा ग्लोब जिसको आप बिल्कुल एक राउंड द क्लॉक देखते हैं, ये किसका है? लिल्लाही मा फिस समावाती वल, ये पूरी दुनिया का आप इस वक्त एक मुल्क समझे, किसका है? बियदिहिल मुल्क, सूरह मुल्क में कहा। अब ये पूरी दुनिया है तो ये अल्लाह का मुल्क है, तो इस पूरी दुनिया पे किसका निजाम चलना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दुनिया में इस वक्त जितनी कुफर की कंट्रीज हैं, जिसको हम कहते हैं कि काफिर मुल्क या डिसबिलीवर या इस्लाम नहीं, वो क्या हुआ हुआ? बल्कि अल्लाह के मुल्क पर कब्जा किया कुफर ने, बात वजह। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है? पूरी दुनिया पे झंडे अल्लाह के नाम के लग जाए, बात वजह। ये तो अल्लाह अल हलीम है, हिल्म है उसमें, सबूर है कि वो देख रहे लोगों को अपने मुकाबले पे गलत काम करते फिर भी कुछ नहीं कहता, बल्कि उनको और तरक्की मिलती है। तो पूरी दुनिया पे ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा जिस दिन लग जाएगा पूरी दुनिया में अमन होगा। और आपको पता कि ये होगा कब? होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। वो ईसा अलैहिस्सलाम जिनका नाम लेके आज क्रिश्चियन बहके हुए हैं, और हम मुसलमान होते हुए उनका इंतजार कर रहे हैं कि जब वो दुनिया में आएंगे। जितने क्रिश्चियंस हैं उस वक्त जो होंगे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमान होंगे, सिर्फ ज्यूस उनके मुकाबले पे होंगे, हजरत ईसा उनके साथ मुकाबला करेंगे और उनको मारेंगे। और दज्जाल निकलेगा जो कि ज्यूस का लीडर है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसका खात्मा होगा। जब ये सब कयामत की अलामतें शुरू होंगी उसके बाद पूरी दुनिया में अमन होगा, इतनी बरकत होगी आसमान से। हदीस में आता है कि एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी होगा, एक अनार दरख्त का जो है वो पूरी फैमिली को पूरा होगा। ये जो आज दुनिया में बेसकूनी और परेशानी और इकोनॉमिक डिसऑर्डर और ये डूब गई करेंसी वो डूब गई, ये सब फितना है। पढ़ेंगे आप तीसरे पारे में इकोनॉमिक डिसऑर्डर, पूरी पूरी कौमें आज गुलाम हुई हुई हैं। मैं कहती हूँ आप सिर्फ यहाँ से लेकर सिर्फ बकरा कैंट तक पढ़ लें, आपको पूरे दीन का ए टू जी समझ आ जाएगा। और खोल के अल्लाह बताता है, हमारा दीन वो है भी नहीं कि जो छुपाया जाए, कि खाए अल्लाह ये बात ना पता लग जाए, नहीं ये तो जरूर पता चले क्योंकि ये ट्रू है। किस तरह आज पूरी नस्लों को मुसलमानों की और काफरों की सबको चंद लोगों ने हाथों में लिया हुआ, सूद के जाल में फंसा के, और किसी तरह क्या क्या और हालात पैदा किए हुए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे काम जो है ना करो, फाइनिन तो हो फला उदवाना। हाँ अगर वो बाज आ जाए, किस बात से? ये परसिक्यूशन से, मुसलमानों को कुछ ना के अमन से अपने एक मुल्क में एक नॉन मुस्लिम मुल्क बना हुआ रहता है, छेड़ो नहीं उनको फिर। हाँ इल्ला अल जालिमीन, मगर जालिमों पे ज्यादती होगी। अल्लाह सुबहान तआला बताते हैं कि मुसलमानों एक वो भी दौर था, 12 13 साल तक हुक्म था कुफ्फ अईदिया को, रोके रखे हाथ ना उठा, मारे खाओ, असल में तरबियत हो रही थी सहाबा कराम की, जो मुश्किलों में ईमान बनता है वो आम दिनों में तो नहीं बन सकता। अब सब बाहर आ गए, आप फिर लड़ो, अब फितनों के जवाब दो। अब इतनी बात क्लियर है, खुलासा समझ आ गया बात का।
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين